मैं तो कई विषयों पर प्रवचन देता हूं, मेरा जो परिचय है उसमें 50 विषय दिए गए हैं, परंतु विश्व भर में जहां भी जाता हूं और ये परिचय कई संस्थाओं को दिया जाता है तो देखा है कि अधिकतर वो इस विषय को पसंद करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि सब यह समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है। स्टीफन कोवे ने एक बहुत अच्छी किताब भी इस पर पूरी किताब लिखी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्थात पहला काम पहले करना है। देखिए, नए साल के भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, नए साल के न्यूज़पेपर में क्या होता है आप देखेंगे, हर पेपर में, इंग्लिश पेपर हो कोई भी पेपर हो, हर पेपर में 2-3 पेज होते हैं जिसमें राशि भविष्य लिखा होता है। सब लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं कि सभी अपना भविष्य जानना चाहते हैं। समय हमारे से कुछ डिमांड भी करता है, अगर उसके अनुसार आप करो तो टेंशन नहीं होगा। कोई भी काम जब आपको सौंपा जाता है तब वो अर्जेंट नहीं होता है, परंतु क्योंकि समय पर हुआ हम काम नहीं करते हैं इसलिए अंत घड़ी में टेंशन हो जाता है। तो ऐसे ही यह जो हमारा काल चक्र है उसमें भी हमें कहीं बहुत बड़ा टेंशन नहीं आ जाए, इसलिए आज आपको समय का महत्व बताते हैं। वर्तमान में क्या समय चल रहा है वह भी स्पष्ट करना चाहेंगे, और समय की क्या पुकार है कि परिवर्तन हो। समय से पहले परिवर्तन हो गया तो खुशी होगी, समय के बाद अगर हम तैयार हुए तो टेंशन होगा। कहीं जाना भी है तो देखो, हाँ, जो व्यक्ति घर से आपको 4:30 बजे निकलना है, आप 4:25 को ही तैयार हो गए, कोई टेंशन नहीं होगा। और कई लोग होते ना धीरे धीरे तैयार होते हैं, तो 6:45 को तैयार हुए तो हड़बड़ी होगी, टेंशन होगा। तो ऐसे ही इस काल चक्र में भी है, और संसार में भी बहुत सारे चक्र है। एक तो रात और दिन का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, ऐसे ही जीवन भी देखो, 4 अवस्थाएं हैं ना, कि बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा, ऋतु ये भी 4 है। तो ऐसे ही यह सृष्टि चक्र के भी 4 युग है, हम सब ने सुना है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्ययुग सत्य का युग है, सत्ययुग है सूर्य के समान, और त्रेता युग चंद्र के समान है। जैसे चंद्र की कलाएं कम होती जाती है, ऐसे ही त्रेता युग में भी धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। और द्वापुर मतलब दोपुर, दो हिस्से हुए, मतभेद भी होता है, हर बात में मतभेद होने लगता है, धर्म में भी 2-4-8 धर्म बढ़ते जाते हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। और फिर है कलह युग, तो वह सचमुच कलह का युग है, काला युग है, कि जब समस्या बढ़ती ही जाती है। और ऐसा क्यों होता है, आप ये भी कहेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, सिर्फ सतयुगी क्यों नहीं रखा, यह सब समस्याएं क्यों लाई, तो परमात्मा ने नहीं किया है, यह विज्ञान का नियम है, कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, कि कोई भी चीज है जिसकी अवस्था नीचे आती जाती है। नया कपड़ा भी आप लेते हैं तो धीरे धीरे उसको पुराना होना ही है, तो इससे यह सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। जो दूसरी बात है कि इस समय आपको बताया कि हम पुरुषार्थ करते हैं, कि मैं आत्मा हूं, मैं यह शरीर से परे व दिव्य चेतना हूं। जब वो आप पुरुषार्थ करते हैं तो उसी से शांति सुख सातों गुणों का अनुभव करते हैं, परंतु सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं होता है। और क्योंकि यह पुरुषार्थ नहीं होता है तो इसलिए धीरे धीरे शरीर की भी असर आत्मा पर होने लगती है। बल बहुत स्लो प्रोसेस है परंतु असर होने लगती है, और त्रेता के अंत तक वो बिल्कुल खत्म हो जाता है यह भान कि मैं आत्मा हूं। सतयुग और त्रेता में मैं आत्मा हूं, उसी भान से हम सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु त्रेता के अंत में जब द्वापर आया तो वह स्थिति खत्म हो जाती है। फिर भी हमको शांति चाहिए, फिर भी सुख चाहिए। जैसे कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, जब वो बहुत कमाता है तब तो आराम से रहता है, बहुत खर्च करता है, लेकिन जब वो सब पैसे चले जाए, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो भी उसकी जो लाइफस्टाइल है वो बदली नहीं हो सकती है। उसको एयर कंडीशन रूम चाहिए, अच्छी कार चाहिए, तो क्या करेगा? उल्टे रास्ते से भी कमाने की कोशिश करेगा, हो सकता है चोरी भी करेगा। तो ऐसे ही आत्मा की स्थिति होती है द्वापर से, कि उसे शांति चाहिए, सुख चाहिए, परंतु वह मिलता नहीं है, तो इसलिए शरीर से प्राप्त करने की कोशिश करता है। और शरीर में तो वह गुण ही नहीं, जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो क्या करता है, हड्डी को चबाता रहता है और सोचता है कि भी उसी हड्डी में से खून आ रहा है। वास्तव में खून कहां से आता है? उसके मुंह में छाले पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वह हड्डी लगती है और फिर अपना ही वो खून पी रहा है। ऐसी ही हमारी भी स्थिति हो जाती है कि हम देह भान में आते हैं, अपने आप को तकलीफ दे करके शांति प्राप्त करने की कोशिश करते, उल्टे अशांत हो जाते हैं, प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करते मोह आ जाता है, सुख प्राप्त करने की कोशिश करते लोभ और अहंकार आ जाता है। तो ऐसे सभी पांच जो अवगुण है वह जीवन में आते जाते हैं और यह द्वापर और आगे बढ़ता जाता है, समस्याएं आगे बढ़ती जाती है और फिर कलयुग आता है कि जब और हम दलदल में फंसते जाते हैं। डिटेल्स में नहीं जाता हूं, और भी आगे आपको समझाएंगे। और फिर जो कलयुग का अंत है, आप सबने भी सुना है ना कि कलयुग के अंत के क्या क्या लक्षण है, वो गीत आपने सुना है, तो सब लक्षण देखो तो अभी दिखाई दे रहे ना। देखो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का एक लक्षण है कि एक कुएं का पानी चार कुएं में जाएगा, परंतु चार कुएं का पानी एक कुएं में नहीं आएगा। आश्चर्य होता है ना कि एक का चार में जा सकता है तो चार का एक में भी तो आ सकता है। शास्त्रों में जो भी बातें हैं ना, वो वास्तव में रूपक के समान है, उसका सही अर्थ हम नहीं समझते, बस उसको ही कहानी सुन करके सोचते रहते कि ऐसा ही हुआ। तो इसका भी बहुत ही अच्छा अर्थ है। देखिए, अगर पिता की मृत्यु हो जाए छोटी आयु में, तो एक अनपढ़ मां भी घर घर में बर्तन साफ करके कपड़े धो के भी चार बच्चों को पढ़ा देगी, किसको डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, आईएएस ऑफिसर बना देगी। परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते और मां बूढ़ी हो जाती है तो चार बच्चे एक मां को नहीं संभाल सकते हैं। क्या करते हैं? हाँ, टर्न बनाते हैं कि 3 महीना इसके घर में रहना है, 3 महीना दूसरे के घर में रहना है, या तो क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में रख के आते हैं। देखिए, हाँ, जब आजकल क्या हुआ है, हाँ, बच्चे का जन्म होने से पहले ही सोचते हैं कि वे कौन से स्कूल में एडमिशन लेंगे, ऐसे जल्दी ये समय आने वाला है। आपकी आयु 50 साल की होंगी ना तो बच्चे पूछेंगे, मम्मी डैडी अब वृद्धाश्रम में एडमिशन ले ले, नहीं तो आगे चल के एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यह भी कलयुग के अंत की सचमुच निशानी है। और कलयुग के अंत में सचमुच परिवर्तन होना है। आइंस्टाइन को किसने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, उसने कहा यह तो पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, परंतु चौथे के बारे में बता सकता हूं। पत्रकार ने कहा बताओ बताओ चौथा विश्व युद्ध कब होगा, तो आइंस्टाइन ने कहा चौथा विश्व युद्ध कभी भी नहीं होगा, तीसरे विश्व युद्ध के बाद ही पत्थर युग आ जाएगा। और अब देखो तो ऐसे नहीं सारी चीजें हैं कि पृथ्वी का 100 बार नाश हो जाए इतने एटम बॉम्ब्स बने हुए हैं, और कभी भी अचानक इसका उपयोग हो सकता है, एक सेकंड पहले भी पता नहीं होगा। नहीं, जब बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी तो पता था एक सेकंड पहले भी, अमेरिका में भी ट्विन टावर पर हल्ला हुआ तो एक सेकंड पहले भी मालूम नहीं था। तो ऐसे अचानक विश्व युद्ध भी हो सकता है, और तब हमें पछताने का समय नहीं आया ये सोचना कि कलयुग का अंत तो होना ही है। परंतु जब ये अंतिम नजारा आए तब आपको प्रसन्नता होगी या प्रायश्चित होगा। अगर आपकी अवस्था अच्छी बनी है, आत्मिक स्मृति बहुत ही अच्छी बनी है, आप दिव्य गुणों से भरपूर बने हैं, तो प्रसन्नता होगी, एक सेकंड में आत्मा शरीर को छोड़ देगी। और अगर आपकी वह स्थिति नहीं तो प्रायश्चित ही प्रायश्चित होगा। और देखिए कि नहीं सत्युग को जैसे का सूर्य के समान, तब नारायण का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, और त्रेता में राम सीता का राज्य है। आप कहेंगे कैसे पता चला, तो कहते हैं सूर्य नारायण और रामचंद्र, हाँ तो रामचंद्र के समान है, सूर्य नारायण के समान है, जो सदा के लिए उनकी एक रस स्थिति है। और स्वस्तिक भी बनाते हो ना, कहते स्वस्तिक एक अच्छी निशानी है, शुभ की निशानी है, कोई भी शुभ काम करना है तो स्वस्तिक बनाओ, क्योंकि वह स्वस्तिक हमें इस काल चक्र की याद दिलाने वाला है। कहते हैं कि हिटलर का भी स्वस्तिक था, परंतु वह स्वस्तिक उल्टा था तो उसका विनाश हुआ। और स्वस्तिक में भी आप देखिए क्या पहला है ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि दाता की निशानी है, कि भी सतयुग में सभी दाता के समान है, भरपूर है। फिर त्रेता युग आता है तो जो दूसरा पोजीशन ऐसे है आधा है, कि पूरी तरह से दाता भी नहीं है। फिर द्वापर युग आता है तो स्वस्तिक का तीसरा पंख ऐसे है, मतलब कि अभी तो लेने वाले बने, औरों से मांगने वाले बने, द्वापर से मांगने वाले बनते गए, द्वापर से समस्याएं आती गई, औरों से समाधान मांगने वाले बनते गए। और कलयुग में तो यह और भी चढ़ती कला में गया, हाँ समस्याएं बढ़ती ही गई। तो ये जो चार युग है काल चक्र के, और इसकी अवधि है 5000 वर्ष। आप कहेंगे कि कैसे पता चला 5000 वर्ष, तो देखिए हाँ बाइबल में भी लिखा है, जिनेसिस में आता है बाइबल में कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो क्राइस्ट के बाद और 2000 साल हुए, 5000 वर्ष हुए। महाभारत में भी यह है कि 5000 वर्ष पहले भी महाभारत हुआ था। और ये भी कहते हैं हाँ कि यह घर घर में महाभारत है, हाँ वह सिर्फ वैसे कोई कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है। आज देखो महाभारत के सारे कैरेक्टर मौजूद है, हाँ घर घर में शकुनी मामा है ना या नहीं है, है ना, देखो हाँ घर घर में दुर्योधन है। तो इसलिए आज वही आसार है। ऐसे ही मुसलमान भाई बहन भी ये मानते हैं कि कयामत का समय आने वाला ही है। और आप शायद यह कहेंगे कि भी कैसे पता चला है 5000 वर्ष, कहां से लाए आप? तो एक तो ये बातें, दूसरा एक साल कितने दिन का है? 365 डेज। तो 365 डेज कहां से आए? हाँ, कभी प्रश्न किया कि एक साल 400 दिन का होता तो अच्छा है, या 350 कर दो, राउंड फिगर बना दो, 365 क्यों कहते हो? हाँ, एक मिनट में 60 सेकंड क्यों कहते हो? 50 सेकंड कर दो या 100 सेकंड कर दो। तो देखो, हम कभी प्रश्न नहीं पूछते कि एक दिन के 24 घंटे क्यों, 25 घंटे क्यों नहीं। हाँ, तो जहां से 24 घंटा आया वहीं से 5000 वर्ष भी आया। और यह ज्ञान हमें परमात्मा ही दे सकते क्योंकि यह चक्र से परे है। कहते हैं ना, घर में भी कोई समस्या होती है तो घर वाले उसको नहीं सुलझा सकते, बाहर का व्यक्ति उसको सुलझा सकता है। तो परमात्मा को इसका पता है। ये भी लोग पूछते हैं कि भी कहीं अवशेष मिले हैं 1,00,000 साल पुराने हैं, तो वो हो सकते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वह तो अनादि काल से है, करोड़ों सालों से है, ये चक्र उसका फिरता ही रहता है। तो इसके कारण जरूर 2,00,000 साल पुरानी चीज भी होगी, परंतु पृथ्वी में जो उथल पुथल होती है उसका हमें पता नहीं। इसलिए ये समझते हैं कि भाई यह तो चीज इतनी पुरानी है, तो काल चक्र में अभी अंतिम समय हमारा चल रहा है, तब हमको जागना है, नहीं तो प्रायश्चित का समय आएगा, ये पक्का कर लो। मदर टेरेसा एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, पीछे से किसी की रोने की आवाज आई, तो पीछे मुड़ के देखा तो पता नहीं चला कि कहां से आवाज आई है, तो फिर से आगे गए तो फिर से आवाज आई, जिस दिशा में आवाज आ रही थी उसी दिशा में गए तो देखा कि कलकत्ते में एक बहुत बड़ा कचरा पेटी का डिब्बा था, उसके अंदर एक व्यक्ति गिरा हुआ था, उसको चूहे काट रहे थे और वह रो रहा था। उसको बाहर निकाला, अच्छा से मलम पट्टी की और फिर पूछा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो कहा नहीं नहीं पूछो नहीं, मुझे मरने दो, मुझे मरना ही है। फिर और कुछ दिन हुए, फिर से बहुत ही प्यार से पूछा तो उसने बताया कि 10 साल पहले मुझे यह लेप्रसी की बीमारी हुई, पहले तो घर वालों ने मेरी पालना की परंतु जब देखा कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं तो बहुत कुछ डांटने लगे, कल तो बहुत मुझे डांटा कि ये बूढ़ा मरता भी नहीं है, जीवन भर हमको दुख दिया है, अभी मरते मरते भी दुख दे रहा है, और बहुत झगड़ा किया और मुझे उठा के कचरा पेटी में डाल के गए, अब मुझे भी मरना है, मुझे जीना नहीं है। तो देखो कैसी स्थिति है कलयुग के अंत में। और एक, जब वह ज्यादा तो नहीं जिया परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तब उसने एक बात कही, उसने कहा कि सारा जीवन मेरा दुख में बीता है लेकिन मेरी मृत्यु सुख में हो रही है क्योंकि आप सभी ने मुझे निस्वार्थ प्यार दिया। तो निस्वार्थ प्यार देने वाला एक परमात्मा ही है, और कोई हमें निस्वार्थ प्यार नहीं दे सकता है। गहराई से सोचना इस बात पर, थोड़ा सा चिंतन करना कि आज आप स्वस्थ है, सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो घर वाले भी आपकी संभाल करते हैं, आपको प्यार देते हैं, परंतु कल आपका बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत लंबी बीमारी आ जाए, 6 मास 2 साल आप बिस्तर में ही पड़े रहो तो क्या होगा? पहले तो घर वाले संभाल करेंगे लेकिन फिर 6 मास 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा? हाँ, मैंने कई बार ऐसी वर्कशॉप कराई है और लोगों को पूछा तो लोग कहते सच है, 1 साल के बाद तो कहेंगे कि बूढ़ा कभी मरे तो अच्छा है, कहा मरता भी नहीं है, परंतु इस स्थिति में भी आप परमात्मा को निस्वार्थ रूप से याद कर सकते और पूरा परमात्मा का प्यार प्राप्त कर सकते। इस बात पे भी सोचना, हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ भ्राता थे जगदीश चंद्र जी की, जिन्होंने 200 जितनी किताबें लिखी है, तो वह एक बार यह बात बता रहे थे कि बस सोने से पहले मैं यह सोचता हूं कि मेरा तो एक भगवान है। हाँ, ये सब जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं छोटा सा भी स्वार्थ है, तो बस इस बात के बारे में सोचता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं, परमात्मा की याद में खो जाता हूं। तो आप सबको भी ये करना है, करेंगे ना? हाँ या ना? अच्छा, देखो थोड़े ही लोग बोलते हैं, अनु विचारों में चले गए। अच्छा, अभी अंत में आज आपको 5 प्राणायाम भी सिखाने हैं, एक्टिव करने वाले प्राणायाम अभी जरूर सीख लेना है, क्योंकि ठंडी आ रही है ना, ठंडी में आप करो 10-15 मिनट भी, ठंडी भाग जाएगी। और 5 प्राणायाम सीखे उससे पहले आज हमारा सौभाग्य है कि चंद्रिका दीदी भी हमारे बीच में है और हमें बहुत ही प्रेरणाएं देंगी, उनमें इतनी शक्ति है। हाँ, इतना अच्छा सुनाती है, आज भी मुझे याद है उनकी एक बात, बहुत साल पहले सुनी थी। हाँ, भगवान को कहते हैं बा बा, माँ को क्या कहते हैं? बा। और बाबा है दो बार, बा मतलब बाबा। और पिता को क्या कहते हैं गुजराती में? बापा, मतलब बा का जो चौथा हिस्सा है वह है बापा, ठीक है ना? और बा का डबल जो प्यार देने वाला है वह परमात्मा है, बाबा। तो अच्छे से दीदी को सुनना, और फिर हम जो 5 एक्टिव करने वाले प्राणायाम है वह आज ही आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि यहां अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो घर जाके भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत ही प्यार से हमारे मीठे गिरीश भाई जी के तन को स्वस्थ रखने के संबंधी बातों को सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि तन केवल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, अगर आत्मा है तो ये शरीर है, नहीं तो ये शरीर तो मुर्दा है। तो हमें तन, मन और संबंध तीनों के ही स्वास्थ्य के बारे में सोचना जरूरी है। जब हम मन कहते हैं तो हमें आत्मा के संबंध में सोचना होता है, क्योंकि मन शरीर का, मन आत्मा का एक कार्य करता है, और इसी मन के लिए ही गाया हुआ है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का आधार इस शरीर के अंदर नियमित रूप से धड़कन करने वाले हृदय पर हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा के अंदर मन की जो शक्ति है, संकल्प शक्ति, विचार करने की शक्ति, ये संकल्प शक्ति के आधार पर हमारे जीवन के हर कर्म चलते हैं। लेकिन मन से भी ऊपर एक शक्ति है बुद्धि। बुद्धि की अनेक शक्तियां हैं, धारण शक्ति, ग्रहण शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, लेकिन इन सर्व शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है स्मृति शक्ति। स्मृति के आधार पर ही हमारा जीवन का कार्य चलता है। अगर आप भूल जाए कि आज मुझे क्या करना है, तो आपका वो काम रह जाएगा। ये स्मृति के डिस्टर्ब होने से इंसान पागल हो जाता है। तो ये स्मृति का स्वास्थ्य और इस स्मृति का अपने जीवन पर प्रभाव है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। जीवन दो मुख्य शब्दों के आधार पर है। एक है स्मृति और दूसरी है विस्मृति। क्या हमें याद करना है, क्या हमें भूलना है, इस दोनों बातों का अगर सही ज्ञान मिल जाए तो स्मृति के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियों को हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में स्मृति का कितना महत्व है, इसको हम थोड़ा सोचे। आप जानते हैं कि जब आपके मन में कोई बहुत अच्छी बात याद आ जाए तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन कोई चिंता की बात, कोई दुख की बात, कोई निष्फलता की बात आपको याद आती है तो आप शक्तिहीन हो जाते हो। स्मृति के आधार पर हमारा स्वास्थ्य भी बनता है। अगर आप किसी तनाव में हैं या फिक्र में हैं, आपके आगे कितने अच्छे भोजन रखे होंगे लेकिन आपको खाने की रुचि नहीं होगी। आपको बार बार बुलाने पर भी आप कहेंगे नहीं, खाने की कोई खास इच्छा नहीं है। और फिर भी अगर आपको आग्रह किया, आपने भोजन खा लिया, तो वो पाचन नहीं होता है और इसमें से एसिडिटी हो जाती है। लेकिन उसके विरुद्ध अगर समझो आपको कोई खुशी का समाचार मिल गया, आपका बेटा एग्जाम में पास हो गया या लॉटरी लग गई किसी बात की, तो आप इतने खुश हो जाते हो, आपकी स्मृति में वो बात की याद का इतना प्रभाव रहता है और आप फिस्ट मांगते हैं, पार्टी लेते हैं, पार्टी देते हैं, सबसे पहले आपको भोजन की इच्छा जाग उठती है। इस बात से ये समझना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक करना हो तो हमारी बुद्धि के अंदर खुशी प्रदान करने वाली बातों का चिंतन ही करना चाहिए। ये स्मृति का प्रभाव हमारी निंद्रा पर भी पड़ता है। समझो आपने भूत की बातें सुनकर, गोस्त की बातें सुनकर या ऐसी पुस्तकें सुनकर आज निंद की, तो आपकी निंद में कौन आएगा? कौन आएगा? भूत आएगा। आपने देखा नहीं है, लेकिन केवल वो बातों की याद से भी आपको भूत दिखाई पड़ेगा। हमारे गिरीश भाई बार बार आपको परमात्मा के बारे में इशारा करते हैं, इसलिए कि अगर परमात्मा को आप नहीं भी जानते हो, आपने देखा भी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमात्मा की बातें सुन करके, परमात्मा के बारे में चिंतन करके अगर आप सो जाएंगे, तो आपको नींद में दिव्य अनुभूतियां होंगी, परमात्मा शक्ति की अनुभूति होंगी। ये स्मृति का विज्ञान कहता है कि जैसी आपकी स्मृति होती है, वैसा ही आपका औरों से व्यवहार होता है। आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और टिकट मास्टर के आगे बहुत बड़ी क्यू खड़ी है और आप उनसे टिकट मांगते हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत टेंशन में होते हैं। या कोई भी ऐसे स्थान पर जाओ तो, और फिर उनके व्यवहार के अंदर अनुचित बोल या गुस्से वाले बोल देखने में आते हैं। स्मृति में तनाव है तो व्यवहार भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपकी स्मृति में प्यार है, सम्मान है, सद्व्यवहार है, तो वो स्मृति का व्यवहार आपके कर्म दिखाई पड़ता है। इससे भी आगे बढ़ करके ये हमारी स्मृति का प्रभाव हमारे टोटल व्यक्तित्व पर पड़ता है। कहा जाता है, भरिया हो याद खूने ख्वाब या केवल खुमारी थी, हृदय ना भाव आंखों मा सदा पर खाई आवे छे। आपकी स्मृति में जैसे भाव होते हैं वो आपके चेहरे से प्रकट होते हैं, आपके नयनों से प्रकट होते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे चेहरे को सुंदर बनाया लेकिन मुख पर हास्य नहीं आ सकता है, व्यवहार में निर्माणता नहीं आ सकती है, तो वो सुंदरता किस काम की जिस फूल में खुशबू ना हो। लेकिन अगर आपकी स्मृति में ये रहे कि मैं तो ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान के बगीचे का फूल हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं और इसलिए भगवान के गुणों की सुंदरता वही मेरी सुंदरता है, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, मैं ज्ञान प्रेम आनंद खुशी शांति शक्ति प्रेम और प्रकाश का साक्षात स्वरूप, हम आत्मा हैं। और हम आत्मा देव आत्मा हैं। आज आप सबको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहूंगी जो आपको मन ही मन करनी है। ये मन की एक्सरसाइज है। मनुष्य के अंदर चार प्रकार हैं और वो उनकी वृत्ति के आधार पर है। कहा जाता है, जैसी वृत्ति वैसी कृति और जैसी कृति वैसी आकृति। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा चाड़ी खाए, कोई इंसान छिपा नहीं सकता है, चेहरे से हर बात स्पष्ट हो जाती है। तो मानव उसमें चार प्रकार हैं। हमें देखना है कि मैं किस प्रकार का मानव हूं। एक मानव दानव है, एक मानव मानव है, एक मानव योगी है और एक मानव देव है। जो मनुष्य कहता है कि मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा, ये है राक्षस, ये दानव। और वो अच्छा काम करता नहीं है और अच्छा काम करने वालों को करने देता नहीं है, ये है मानव में राक्षसी वृत्ति। देख लेना, अगर अपने अंदर किसी कोने में ऐसा शैतान छुपा हुआ हो, आज ही उसे निकाल दो। निकाल सकते हैं? अंदर सोया हुआ शैतान निकालना चाहिए? कुछ जवाब नहीं आ रहा है। ये शैतान के लक्षण सुनाएं आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, परचिंतन, प्रदर्शन, प्रपंच, तेरा मेरा, मान अभिमान, अपमान, शंका कुशंका, ये सोया हुआ शैतान। ये मानव को दानव कहलाता है। हमें मानव बनना है। दानव से अगर मानव भी बन जाए बहुत अच्छा है। मानव किसे कहते हैं? मानव कहता है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। और वो जीवन में छोटा भी काम करता है अपने मित्र संबंधी आदि के लिए, तो भी बार बार वर्णन करता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुमको ये दिया, तुमने हमें क्या दिया। और ये कहने के सामने जवाब क्या मिलता है कि अगर तुम्हें ऐसा बार बार सुनाना था तो हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मानव मानव को जवाब भी ऐसा ही देता है। आज किसी को किसी की कदर न है, न किसी को किसी की कीमत है। अपने अंदर देख लीजिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं स्वार्थ वृत्ति से, कुछ मिलने की भावना से करता हूं, तो मैं मानव ही हूं, मानव से उठकर आगे नहीं। मनुष्य के ऊपर की जो कक्षा है वो है योगी। योगी कहता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये तो सब परमात्मा का है। और वो अपने जीवन में कितने भी महान काम करते हैं, उसे कभी अभिमान नहीं आता है कि ये मैंने किया। वो समझता है ये करने कराने वाले तो भगवान हैं और हम केवल उनके हाथ में उनका इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या आप योगी बनना चाहेंगे? आप सबको योगी बनना पसंद है? अरे आप बोल नहीं रहे, ठंडी लग गई है क्या कि आपको डर लगता है कि योगी बनने के लिए सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे या भगवे कपड़े पहनने पड़ेंगे या घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा डर लगता है क्या? डर लगता है नहीं ना? योगी बनना पसंद करेंगे तो जरा हाथ उठाओ। घबराना नहीं, भगवान अपने बच्चों को कोई मुश्किल काम नहीं देता है। स्वयं परमात्मा योग सिखाने आए हैं और यही परमात्मा योग की परिभाषा देते हैं कि आप अपने को एक ज्योति बिंदु आत्मा समझकर, मुझ ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को बुद्धि से याद करो। आप मेरे बच्चे हो, और मैं आप बच्चों का सर्व संबंधी हूँ। परमात्मा हमारे माता पिता गुरु बंधु सखा स्वामी मित्र साजन सर्जन सर्वस्व बन सकता है अगर हमारी श्रद्धा है। हम ज्ञान के नेत्र से परमात्मा को देख लेते हैं, हम दिल से परमात्मा को कहते हैं कि ओ पिता, मैं आपका था, मैं आपका हूं, मैं आपका ही होकर रहूंगा। योगी बनने के लिए इतनी सहज दिल की भावनाएं अपने अंदर उजागर करनी है और परमात्मा को दिल से कहना है कि बाबा तू मेरा मैं तेरा। इतना कह सकते हो तो बोलिए, बाबा तू मेरा मैं तेरा। ये बाबा वो है जो हम आत्मा के पिता हैं, ज्योति बिंदु हैं, सर्व गुणों के सागर हैं। वो पिता हमें देव बनाने आए हैं। देव किसको कहते हैं? देवता कहते हैं कि आपका भी आप रखो और मेरा भी आप रखो। जो देता है वो है देवता, और इसीलिए हम लोग कहते हैं सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, धरती माता। अगर हमें अपने इस जीवन के अंदर मनुष्य से देव बनना है तो हम देना सीखे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। देवता हमेशा दाता की स्थिति में रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है राक्षस और देवता की। एक बार भगवान ने अपने दोनों ही बच्चों को निमंत्रण दिया, देवताओं को भी भोजन का निमंत्रण दिया, दानवों को भी दिया। एक सभाखंड में देवों के लिए तैयारी की थी, एक में दानवों के लिए की थी। ये भोजन में कंडीशन ये रखी थी कि खाना खाना है लेकिन हाथ टेढ़ा नहीं करना है। 36 प्रकार के भोजन आए, देवों और दानवों की सभा अपने अपने हॉल में लगी। जब भोजन डाला गया तो राक्षसों के सभा खंड से तो मारा मारी का आवाज आया, क्लेश हो गया क्योंकि खा नहीं सकते थे, हाथ टेढ़ा नहीं करना था। लेकिन जो देवों की सभा थी वहां से तो बहुत खुशी का आवाज आ रहा था, सभी बहुत मौज मना रहे थे। क्या कारण होगा? कोई सुना सकते हैं क्या कारण है? देवों ने क्या किया? एक दूसरों को खिलाया। उसने उसको खिलाया, उसने उसको आमने सामने खिलाया। और राक्षस मेरा मेरा करने में न खुद खा सके न औरों को खाने दिया। हमेशा ये सिद्धांत याद रखिए कि देने से बढ़ता है, वृद्धि होती है। इसीलिए आज से एक संकल्प कर लो कि मुझे जीवन में सर्व को देना है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। आप औरों को प्रेम दे सकते हैं, आप औरों को खुशी दे सकते हैं, आप औरों के सद्गुणों की महिमा को जान करके सम्मान दे सकते हो, आप उन्हों के जीवन में उत्साह बढ़ा सकते हो, अच्छे काम करने वालों को आप अभिनंदन दे सकते हो। ये सब देने में कोई खर्च नहीं होता है, दिल की शुभ भावनाओं से और शुद्ध भावनाओं से अगर आप देते रहेंगे तो आपका भंडारा और ही भरपूर होता रहेगा। तो इसलिए संकल्प कीजिए कि मुझे योगी बनना है और योगी से एक कदम आगे मुझे देवता बनना है। देवता बनाने लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा चाहिए, इसलिए कहा है मानुष से देवता किए कर्तन लागीवार। परमात्मा की ये शक्ति है जो इस राजयोग की पढ़ाई से नर को नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। आप सभी को यहाँ स्वास्थ्य के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप स्वास्थ्य को कितना भी अच्छा कर लो, आप धन संपत्ति कितनी भी कमा लो, आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पर बैठ जाओ, लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, उन्हें संबंधों का स्वास्थ्य बनाना भी सीखना पड़ेगा। आज अधिक टेंशन का कारण संबंध में विकृतियां हैं, संबंधों में अनबन है, संबंधों में स्वार्थ है और परिणाम स्वरूप जीवन के अंदर वो खुशी नहीं है। हमें अपने संबंधों को सुधारने के लिए योगी जीवन बनाना होगा, और योगी जीवन का सबसे पहलू है अभिमान को तोड़ना, अहंकार को तोड़ना, मैंपन और मेरेपन को तोड़ना। और जब मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, तो देह और देह के संबंधों में एक ऐसा अनासक्त भाव आएगा जो सबके बीच रहते हुए, सबके साथ संबंध निभाते हुए आप जल कमलवत इस संसार के अंदर रह सकेंगे। तो आप सबसे हम एक आशा करती हूं कि अपने संबंधियों को ये स्वास्थ्य की सौगात देने के लिए आप प्रेम से, अभी भी कल का दिन है, कल शाम का समय है और बड़े नसीब से 28 तारीख सुबह को भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ताली तो बजाओ। हमारे गिरीश भाई जी 27 रात को ट्रेन से जाने वाले थे, हमने कहा नहीं आप 28 तारीख सुबह को जाओ, आपका समय ठीक सेट हो जाए ऐसा ही कारोबार कर लेंगे। तो 28 तारीख सुबह को भी सेशन रखा है और उस सेशन के अंदर सुबह वाले भी आएंगे, शाम वाले भी आएंगे और हमारे गिरीश भाई को इस 5 दिन की पढ़ाई के द्वारा हमने जो प्राप्त किया है उसकी अनमोल भेंट धरेंगे। रुपये पैसों के रूप में नहीं, कोई चीज वस्तु के रूप में नहीं, लेकिन हमने जो पाया है उसका कोई रूप हम किस विधि से आपके आगे रखेंगे। तो आप सभी को मंजूर है 28 तारीख सुबह को आप सभी आएंगे? आएंगे जरा आवाज से जवाब देंगे, जो कहते हैं हम आएंगे वो हाथ उठाएं। पूरा देखने में तो कम ही आएगा पर मैं समझती हूँ सभी आएंगे 28 तारीख सुबह को। हम महामिलन मनाएंगे, ईश्वर से मिलन मनाएंगे, परमात्मा शक्ति संसार की अंतिम और सर्वोत्तम शक्ति है। हम ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं, हम ईश्वर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम भगवान को अपने जीवन में यूज कैसे कर सकते हैं, ये तरीका, ये विधि आप सबको सिखाई जाएगी, जिस विधि से आप स्वयं भी सुखी और संसार भी सुखी बनेगा। व्यक्ति का संबंध परिवार, समाज और विश्व से है। जब तक विश्व नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, परिवार नहीं बदलता, तब तक केवल स्वयं के परिवर्तन से कार्य पूरा नहीं होता है। हम सब ये संकल्प करें कि भले आज हम थोड़े लोग यहाँ स्वास्थ्य के सुंदर सिद्धांतों को सुन रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले मित्र, संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, जिनों को भी आप लाना चाहते हैं, अभी भी दो दिन उनको बुला करके जितना जीवन में सीखा उससे भी कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम सभी अपने अंदर में ये संकल्प करें कि मैं अपने जीवन के परिवर्तन से सारे विश्व के परिवर्तन के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, जिम्मेवार समझता हूँ। तो आप सभी से एक छोटी विनती है, आप अपने परिवार में, चाहे जिनसे आपको बातचीत का नाता टूटा हुआ हो, अरे कुछ मित्रता दूर की हो गई हो, उन्हें भी प्रेम से ये निमंत्रण देना कि आपके फायदे की एक बात मैं सुनाने आई हूँ, आपके लिए एक सुंदर निमंत्रण में ले आई हूँ, आप चले और उसका फायदा ले। तो देने से वृद्धि होती है, और ये भगवान ने हम सबको मुफ्त में दिया है। हमारे गिरीश भाई देखो, उन्होंने परसों सुनाया, साल के 300 दिन वो इसी कार्य में लगे रहते हैं और बिना मूल्य सेवा करते हैं। उनकी यही चाहना है कि हम भी इस बातों को सीख कर औरों तक पहुंचाए। तो हम सभी अपने आप से शुभ संकल्प करें कि मैं अपने जीवन से सर्व को सुख दूंगी, मैं सर्व के प्रति शुभकामना रखूंगी, और मैं सर्व के साथ उदार चित्त का व्यवहार रखूंगी, क्षमा भाव, दया भाव, उदारता, सेवा भाव, ये योगी के गुण हैं। हम सभी जहां है वहां खड़े हो जाए। और पांच बातें अपने योगी जीवन के प्रसाद के रूप में आज उसको स्वीकार करें। मैं कहूंगी, आप बोलेंगे, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याण के कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझती हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याण के कार्यार्थ स्वयं को निमित्त समझती हूं। मेरा कर्तव्य है स्वयं का भला करूं, सर्व का भला करूं। स्वयं का भला करूं, सर्व का भला करूं। अपना एक हाथ उठाएं, आपके इन हाथों में दिव्य शक्ति है और ये शक्ति दूर दूर तक जितना दूर आप पहुंचाना चाहे पहुंचेगी। आप जहां है वहां ही तीन राउंड धीरे धीरे लगाएंगे अपनी शक्ति को फैलाते हुए। कर भला होगा भला, आप मन ही मन बोलो, चाहे बड़े आवाज से भी बोल सकते हैं। और धीरे धीरे चक्र लगाएं, कर भला होगा भला, 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 कर भला होगा भला। ओम शांति, ओम शांति।
ये पांच एक्टिव करने वाले प्राणायाम है। जो हार्ट के पेशेंट है थोड़ा धीरे धीरे करना, जो नहीं करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। दो ऐसे हैं जो हार्ट के पेशेंट को बिल्कुल नहीं करने, तो बस इतना थोड़ा संभाल के अच्छे से करेंगे। सबसे पहला है एक्टिव करने वाला सांस, कि दिमाग की जो भी नसें हैं सभी तालू में पीछे आकर के उसका बहुत सारी नसों का अंत हुआ है। इस एक्टिव करने वाले सांस में पूरी जीभ को ऐसे मोड़ते हो, ऐसे उल्टी पीछे मोड़ते हो, तालू में पीछे जितना पीछे ले जा सको ले जाते हैं और उसे मोड़ के रखते हैं। फिर नाक से ही सांस लेना है, नाक से निकालते समय वहां पर कंपन फील करना है, ऐसे होगा। जब सांस को छोड़ेंगे तब वह कंपन फील करिए। हाँ करिए, करिए, हाँ जी करते रहिए। और जब कंपन फील करते हो तब ये भी सोचिए कि दिमाग भी एक्टिव हो रहा है, वह नसें एक्टिव हो रही है, इसके कारण दिमाग भी एक्टिव हो रहा है। हाँ जी करते रहिए, दिमाग सचमुच एक्टिव हो रहा है। करते रहिए, आवाज नहीं आता है, नहीं कर रहे हैं। थोड़ी तकलीफ भी होगी भले शुरू में, क्योंकि आदत नहीं है, पर सचमुच यह हो कि वह ऊर्जा सारी दिमाग में जा रही है, वह नसे एक्टिव हो रही है और सारा दिमाग भी मेरा एक्टिव हो रहा है और सचमुच भी होगा। और देखो थोड़ा और ज्यादा आवाज आए ऐसे। जी करिए, आ रहा है ना, बहुत अच्छा। हाँ तकलीफ हो तो रुको, नहीं तो करिए। दिमाग एक्टिव हो रहा है सारा, दिमाग एक्टिव हो रहा है। अच्छा ओम शांति। अभी दूसरा है जिसको कहा संतुलन करने वाला सांस। जब भी आपको राइट साइड में पैरालिसिस होता है किसी को, तो उसके लेफ्ट दिमाग में कोई तकलीफ होती है। जब लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है तो राइट दिमाग में कहीं समस्या होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि राइट लेफ्ट का नियंत्रण करता है, लेफ्ट राइट का नियंत्रण करता है। तो अगर दोनों को हमें एक्टिव करना हो, आज अधिकतर हम लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं, राइट ब्रेन का कम करते हैं। अगर दोनों का उपयोग करना है तो संतुलन लाना होगा, और बीच की जो कड़ी है वह है हमारा सांस। दिमाग और शरीर के बीच की जो कड़ी है वह है हमारा सांस। तो इस प्रक्रिया को हम तीन प्रकार से करते हैं, आज दो प्रकार आपको बताऊंगा, फिर कल एकदम जो परफेक्ट वे है वो भी हम सीखेंगे। एक सिंपल तो तरीका है, हाथों को ऐसे रखना है, अंगूठे से राइट नासिका को बंद करना है, रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद करना है, और एक नासिका से लेना है, दूसरे से निकालना है, फिर उसी से लेना है, दूसरे से निकालना है। जब सांस बाहर आता है तब नासिका को बदली करना है, लेते समय बदली नहीं करना है, जिससे छोड़ा उसी से लेना है, लेकिन जब बाहर छोड़ेंगे तब बदली करना है। देखो ऐसे होगा, आया समझ में? हाँ करिए। जब सांस छोड़ते हैं तब नासिका को बदली करना है, जिससे छोड़ा उसी से लेना है, जब फिर से छोड़ेंगे तब नासिका को बदली करना है। और जब राइट से ले रहे हैं तब सोचो कि ऊर्जा लेफ्ट में जा रही है, जब लेफ्ट से ले रहे हो सोचो ऊर्जा राइट में जा रही है, और सचमुच सोचना कि यहां से ऊर्जा लेफ्ट में गई, लेफ्ट से राइट में गई। तीन चार बार किया, सारा दिमाग मेरा वाइब्रेट होने लगा, सारे दिमाग में गर्मी फैल रही है, वो एक्टिव होने लगा है, एक्टिव होने लगा है। करते रहिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को एक साथ सिखाना हो तो यही सिखाना चाहिए कि जिससे उनका सारा ब्रेन एक्टिव होगा, पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अच्छा अभी देखो, इससे अभी दूसरा अच्छा तरीका देखो, अभी दूसरा अच्छा तरीका क्या है, यही पोजीशन है, और ये दो उंगलियों को यहां आत्मा के स्थान पे रखना है। सभी प्राणायाम में ये कोशिश की कि हम मन और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनते जाए, तो यहां रखना है, बस वही क्रिया करनी है। अभी सांस लेंगे, सर को ऊपर करेंगे, जी करते रहिए। वैसे राइट से लेफ्ट में ऊर्जा को भेजना है, लेफ्ट से राइट में भेजना है, और आत्मा के स्थान को टच करते रहो, ये पक्का हो। ऑटोमेटिक जब सांस भरेंगे सर को ऊपर करो, ज्यादा लेंगे, जब सांस छोड़ेंगे सर को नीचे करो। वैसे ये भी सीखो कि जीवन में भी झुकना है हमें। आपने भी देखा होगा भारत में बड़े बड़े मंदिर है, करोड़ों का खर्चा करके मंदिर बनाए हैं, परंतु उसका दरवाजा बहुत छोटा रखा है, 4 फीट का ही रखा है। कभी सोचा 7 फीट का क्यों नहीं किया, आराम से अंदर जा सकते थे, परंतु ऐसा क्यों किया? ये याद दिलाने के लिए कि झुकना पड़ेगा, अगर भगवान तक पहुंचना है तो झुकना पड़ेगा। ऐसे जीवन में भी झुकना है। कहते हैं जो जिंदा है वह झुकता है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है, तो झुकना है हमें। अच्छा करते रहो। हाँ सुनिए भी और करते भी रहिए। कर रहे सब? यह अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया, यह सब बुढ़ापे की बीमारी है। हाँ, उससे बचना है तो यह संतुलन करने वाला प्राणायाम रोज 10 मिनट करो। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अच्छा फिर है तीसरा, सफाई करने वाला सांस। हाँ, कि जिससे सचमुच सारे दिन में प्रदूषण की कणिकाएं फेफड़ों में जमा होती जाती है, उसको सफाई करना भी जरूरी है। कैसे करते हैं? उंगलियों को ऐसे रखना है, ऐसे रखिए और सोचिए कि वहां पर मोमबत्ती है। अब बर्थडे पार्टी में मोमबत्ती को बुझाते हैं ना, ऐसा ही करना है। गहरा सांस लेना है, जोर से फूंक मार के हवा छोड़नी है ताकि मोमबत्ती को बुझा रहे, ऐसे होगा, पूरा लेना है। ना सोचो उंगली तक हवा पहुंच रही है, वह मोमबत्ती बुझ रही है या नहीं बुझ रही है। गहरा लेना है। हाँ जब जोर से बुझाओ तो पेट अंदर जाना चाहिए। हाँ, माता जी ऐसे पकड़ के रखे, ऐसे नहीं, सामने रखो और सोचो मोमबत्ती को बुझा रहे हो। आप देखें बेगी भी हर सप्ताह वो फोर्स, जो फोर्स से हवा आती है ना, वो फोर्स आपका बढ़ेगा। अगर चक्कर आते हैं तो नहीं करो, छाती में कुछ तकलीफ हो तो भी रुको, नहीं तो यह भी सफाई करने वाला सांस बहुत अच्छा है। इसको ये भी कहा अग्निमय सांस, फायर ब्रेथ। देखिए बच्चा 1 साल का होता है ना, तो हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं, क्या करते हैं, उसके हाथ में छुरी पकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं बेटे केक काटो, तो बेटा क्या करता है पता है? बड़ा होके आपका जेब काटता है। और बड़ा होता है क्या करता है पता है? आपका गला काटता है। तो इसलिए हाँ, सबसे अच्छा है भारत की संस्कृति सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ उसके। दुनिया में भी देखो सीखना चाहते। मैं पिछले साल जर्मनी में था तो एक जनरल प्रोग्राम हुआ था वहां पर, और कोई विषय पर। मैंने उनको कहा कि विकल्प भी मैं यहीं पर हूं, आप सब प्राणायाम सीखना चाहे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सवेरे सिखाएंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कोई नहीं आएगा, यहां तो लोग बहुत बिजी होते। मैंने कहा ठीक है, एक भी आ जाएगा तो उसको मैं सिखाऊंगा। लेकिन आश्चर्य की बात है 50% लोग वहां आ गए। बहनों को भी आश्चर्य हुआ कि सारे सीखना चाहते। तो हमारी संस्कृति विश्व भर में लोग सीखना चाहते, उनको ठीक से साइंटिफिकली सिखाया जाए। तो यह है अग्निमय सांस, सफाई करने वाला सांस। फिर है जिसको कहा ज्वालामुखी सांस। सचमुच बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से आप करेंगे तो ज्वालामुखी की तरह शरीर गर्म होने लगेगा। और यह हार्ट के पेशेंट को बिल्कुल नहीं करना। हार्ट की आपको तकलीफ है तो अभी देखो, और नहीं करना ही अच्छा है। क्योंकि क्या बात है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि चलो फायदा नहीं हो तो कोई बात नहीं, परंतु लाख में एक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है, भल फायदा भी होता है कुछ लोगों को, लेकिन लाख में एक को भी नुकसान हो तो अच्छी बात नहीं। क्योंकि इसमें बार बार उधर पटाले ऊपर जाएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा, कि जो अच्छी बात नहीं है। ये कैसे करते हैं, ज्वालामुखी सांस, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम भी करना है तो सचमुच गर्मी आएगी, कम से कम इसको ऐसे तो देखो तो 16 मिनट करना है, 16 मिनट नहीं करो कम से कम 12 मिनट तो जरूर करो, तब पूरा फायदा होगा। इसको चार स्टेज में बांटते हैं कि पहले गहरा सांस लेना है, गहरा छोड़ना है, गहरा लेना है, गहरा छोड़ना है, स्लोली करना है, फिर दूसरी बार स्पीड को थोड़ी बढ़ानी है, करीब 2 मिनट स्लोली करेंगे, 2 मिनट फास्ट करेंगे, 2 मिनट एकदम फास्ट करेंगे, फिर लास्ट 2 मिनट तो इतना फास्ट करते हैं कि सांस ले ही नहीं रहे, सिर्फ छोड़ ही रहे और पेट को अंदर खींच रहे। अगर 2 मिनट करने में आपको तकलीफ भी हो तो भले 1-1 मिनट भी करो, तो एक साइकिल है वो 4 मिनट में पूरा होगा, कि 4 मिनट के बाद फिर से स्लो में आ जाओ, फिर से 1 मिनट स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट, एकदम फास्ट। घड़ी में देखने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली करो, भले आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है फिर भी अगर समस्या हो, हृदय में भारीपन हो, चेस्ट में हैवीनेस हो, कहीं मामूली भी पेन हो तो रुक जाओ, परंतु ये अगर धीरे धीरे भी आप करेंगे, यंग है उनको तो जरूर करना है, 50 के बाद भी आप स्लोली करते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, जिससे सारा शरीर आपका आपको लगेगा कि गर्म हुआ, संवेदना हो रही है, और ऐसे करीब 4 राउंड लगाओ और फिर रिलैक्स हो जाओ। 2-2 मिनट के करेंगे, 2 राउंड भी लगाओ तो भी 16 मिनट होगी, 1-1 मिनट का कर रहे हैं भले 4 राउंड लगाओ उसमें भी करीब 16 मिनट होगी, देखो कैसे होगा, एक बार इसे देख लो, हाँ फिर आप करना। समझ में, नाक भी साफ होने लगेगा, बहुत ही अच्छा करेंगे, देखो थोड़ा भी करो, जितना आप कर सकते हो करो, करेंगे, डर रहे, शुरू नहीं कर रहे, सबको आर्ट का प्रॉब्लम है ऐसे, अच्छा देखो करो, थोड़ा फास्ट करो, पेट ही हिलना चाहिए ज्यादा, छाती नहीं हिलनी चाहिए, स्लोली करो, कर रहे हैं थोड़े ही लोग कर रहे हैं, जरूर करो, स्लोली स्लोली करो, लेकिन करो, जो कर रहे हैं, गर्मी लगने लगी तो मेरा शरीर गर्म होने लगा, ऐसे 4 राउंड करके फिर शवासन की तरह लेट जाओ और सचमुच फील करो, फिर जो संवेदनाएं हो रही है फील करो, अंगूठे से लेके सर तक जो भी संवेदना हो ये बस साक्षी भाव से फील करते रहो, फील करते रहो, फील करते रहो, अंगूठे से लेके ऊपर 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 जाना है, ऊपर ऊपर जा। देखो एक समय आएगा ना जब आप उसमें खो जाएंगे, सारी सुध-बुध को खो देंगे। अभी बल नहीं करते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है, फिर भी करना होता है।